जय जय श्री राधे श्याम जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गया गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना सीरावन हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेम उदीरये प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टचिन् ज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपम् शास्त्रज्ञातम् सगण रघुनाथान्वितं संसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा गणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका संत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी शिशुभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव चः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण। आप सभी वैष्णव कृष्ण सत्संग कथा प्रेमी महानुभावों का श्री श्री राधा गिरधारी इस्कॉन मीरा रोड मंदिर में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री जगन्नाथ और गुरु गौरव गंधर्वी का के चरणों में बैठकर वैष्णवों के मध्य में बैठकर उन्हीं भगवान और उनके भक्तों की कथा सुनने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। और ये जो मानव जीवन है उसका सार फल श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण चरण में प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम जो है वो कृष्ण की कथा और कृष्ण के नाम में छुपा हुआ उसी में पड़ा है। जितने पूरे विश्व ब्रह्मांड की मधुरता है मंगलता है वो सब हरि नाम में है हरि कथा में है। इसीलिए इस त्रिभुवन के महान पुरुषों को आप देखें तो उनके व्यवहार में उनके जीवन में सुखदेव महादेव नारद जैसे महाजन या महान पुरुषों के चरित्रों को हम जरा अन्वेषण करें तो उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय इसी में लगा दिया हरि कीर्तन और हरि कथा। यहां तक जिस पवित्र गौड़ीय परंपरा में हम है और उसके मूल आचार्य है वैसे तो श्री गौरांग महाप्रभु जी लेकिन षट गोस्वामी उन्होंने भी जीवन भर क्या किया बस वैराग्य और सादा जीवन जीकर केवल हरि भजन। लगता था कि हमारे गोस्वामी का भजन ही भोजन था भजन ही आहार था। और आप सबको पता है कि अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है ना जीभ टेस्ट छोड़ देती है तो मतलब खाना अच्छा नहीं लगता मतलब कुछ गड़बड़ है शरीर में। ऐसे ही जिसको भजन अच्छा नहीं लगता उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है उसका वो बीमार है। स्वस्थि स्वस्थ हम कहते हैं ना स्व मतलब हम हमारा स्वरूप में अगर हम स्थित हो तो हम स्वस्थ हैं लेकिन ठाकुर सेवा को छोड़कर संसार की व्यथा में हम लगे हैं कथा को छोड़कर तो फिर हम बीमार हैं। इसीलिए इन गोस्वामी और इन प्रेमी वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलते हुए महाजनों गत ये न सब पंथा इस भाव के अनुसार हम प्रत्येक वैष्णवों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का कीर्तन इस तरह का कथा केवल रविवार में ही सीमित न रहे नित्यम कीर्तनीय सदाहरि और नित्यम भागवत। ये केवल बोलने की बात नहीं है हमारे जीवन में करने की बात। तो हर रोज जप करना है रोज हमारे घर में भी कीर्तन जहां भी हो श्वास चल रहा है तो कीर्तन करते रहेंगे वो अटक जाए फिर ठाकुर जी जाने ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए लक्ष्य होना चाहिए।
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कुशाग्र बुद्धि और उनके गुरु चरण की समर्पण निष्ठा और शुद्ध करुणा वैष्णव संत हृदय के पूरे विश्व में उन्होंने इस्कान संस्था के माध्यम से सभी मनुष्यों को ये चांस, एक गोल्डन चांस, एक सुनहरा अवसर दिया कृष्ण से जुड़ने का। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण भक्त, कृष्ण विग्रह, कुछ भी कैसे ही ये न केन प्रकार है न। और इस संसार में भव बंधन, कर्म बंधन, दुख का मूल कारण यही है कि हम कृष्ण को भूले हुए। तो सबसे बड़ा भला, हित करने वाला वह व्यक्ति है जो हमें कृष्ण से जुड़ा देता है। और यही योग है। योग मतलब क्या? युज्यते धातु से जुड़ान शब्द बनता है कि आत्मा भगवान से जुड़ जाए, उनसे कनेक्ट हो जाए, उनके साथ अपने स्वरूप संबंध को समझ ले कि अहम कृष्ण से दासो अस्ति, मैं कृष्ण का दास हूं, तब जीवन सफल है। इसीलिए आते हो आप जगन्नाथ जी के चरणों में, गिरधारी के चरणों में, तो कातर भाव से हाथ जोड़कर करबद्ध अंजलि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, आपके प्रेमी भक्तों के संग में कीर्तन और कथा हमें रोज मिलती रहे, भव बंधन, संसार बंधन, त्रिताप ऐसे ही नष्ट हो जाए। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये दिव्य मंगलमय मधुराति मधुर भगवत हरि कथामृत का पान करा रहे हैं। चैत्र महीना जिसको मधुमास कहते हैं, और उसी महीने में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राघवेंद्र सरकार के रूप में इस भूतल पर प्रागट्य हुए, और कुछ ही दिनों में, शायद 8 तारीख को है ना, तो बस 8 दिन 30 साल हो गया ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव तिथि नजदीक आ रहा है। तो ऐसे कोई निश्चित विषय नहीं था, मैं मंदिर में कीर्तन अभी कुछ एक घंटे पहले बैठा था तो कीर्तन में, तो क्या कहा जाए, तो फिर अचानक मन में विचार आया कि भगवान राम जी के दिव्य चरित्र, उनके सरल मधुर सद्गुणों की व्याख्या की जाए कुछ, जिससे भक्तों में उत्साह बढ़े और सेवा में या साधना में रुचि आनंद बढ़े। और वो तभी बढ़ सकता है जब हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा हृदय निर्मल हो, शुद्ध हो। और ये राम जी के चरित्र उनके प्रेमी भक्तों के चरित्र सुनने से आती है, सीधी बात है। एक एक अक्षरम अपि राम कथा का, राम लीला का एक एक अक्षर रामायण में वो शक्ति है कि पुंसा महापातक नाशनम, भारी से भारी पाप को भी जलाकर भस्म कर देता है राम कथा का एक अक्षर भी। तो वाल्मीकि जी ने इस तरह व्याख्या की है। तो फिर भागवत में भी गंगा तट पर सूर्यवंश के पवित्र राजाओं के चरित्र सुनाते समय सुखदेव जी ने भी संक्षेप में राम कथा का गान किया है। तो उसी प्रकरण के अंतर्गत एक श्लोक का आश्रय लेकर भगवान श्री राम के उज्जवल, पावन, निर्मल चरित्र को सुनेंगे, और सुखदेव जी 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में अंतिम श्लोक है, अंतिम से सेकंड लास्ट श्लोक, अंतिम श्लोक में राम की महिमा है, और इसके बाद जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, उसमें श्री राम वल्लभा श्री जानकी जी का महिमा बताया गया है। मैं चाहता था कि दोनों श्लोक पर बिग बोर्ड पर लिखा जाए, राम जी की महिमा भी और सीता जी की भी, लेकिन राम सीता अभेद है, एक ही है शक्ति शक्तिमान, तो ठीक है, एक ही श्लोक ठीक है। तो आइए प्रभुपाद जी की पवित्र परंपरा के अनुसार भागवत के इन दिव्य श्लोकों का शब्दार्थ, अनुवाद, उच्चारण, श्रवण करके फिर इसके ऊपर तात्पर्य के अनुसार कुछ व्याख्या सुने। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित सुचि, स्वधर्म गृह में धीयम् शिक्षयन् स्वयमाचर एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरित सुचि स्वधर्म गृह मेधीयम् शिक्षयन् स्वयमाचर। भक्त बोलिए माताओं में से पत्नी व्रत धरा, दूसरी पत्नी का स्वीकार न करना, यह व्रत राज ऋषि साधु राजा की तरह चरित्र जिसका चरित्र शुचि शुद्ध स्वधर्म अपने वृत्ति परक कार्य को गृह में दीयम गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुरुषों को शिक्षयन शिक्षा देते हुए अपने आचरण से स्वयं स्वयं आचर अपना कर्तव्य निभाया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं सकता था। उन्होंने हर एक को विशेषतया गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद अपनी कलम चलाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों के लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी श्री सीता देवी का स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से ब्याह कर सकते, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपने पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपने पत्नी की रक्षा की। लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि एक पत्नी व्रत बने, भगवान श्री रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि कि भगवान रामचंद्र जी के आदर्श अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए, गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने के भी रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्त कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग यह सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। और सीता देवी का तात्पर्य भी पढ़ लेता हूँ, अनुवाद भी। सीता देवी भी अत्यंत विनित, आज्ञाकारी, लज्जाशील तथा सती थी, सदा अपने पति को, पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र, प्रेम तथा सेवा से सीता माता ने भगवान के मन को पूरी तरह मोह लिया। तात्पर्य, जिस तरह भगवान राम आदर्श पति थे, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी थी। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन सकता है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव इतरो जनाः, भगवद गीता। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य जनता उनका अनुसरण करती है। यदि राजा, नेता, ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करे तो सारा विश्व स्वर्ग बन सकता है। निस्संदेह इस जगत के नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं शीर्षक नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की महाप्रसाद पूर्ण हुआ ना? गांव में कथा होती तो ऐसे ही अध्याय पूर्ण हुआ, चलो खा। लेकिन प्रभुपाद की परम कृपा है कि जहां पूर्ण होता है वहीं से चालू होता है। और ये सही बात है, विषय भोगों का जीवन जहां पूर्ण होता है वहां से पवित्र भक्तिमय जीवन प्रारंभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का उद्देश्य यही होता है कि जनता वैष्णव इन विषय भोगों से मुक्त होकर भगवान की प्रेममय भक्ति में लग जाए। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में सुखदेव जी ने बहुत सारे श्लोक आगे सुना, ये तो अंतिम श्लोक हम कह रहे हैं, जिसको उपसंहार कहा जा सकता है राम राम चरित्र का, राम लीलाओं का। और मंगलमय है, आनंददायक है, बड़ा मधुर चरित्र है, सरल है। आज लाखों करोड़ों युग हो गए राम अवतार को, सॉरी वर्ष हो गए, लेकिन जनता के जन जन के हृदय में राम ताजा है एकदम और सरल है। ये टेढ़े सरकार की तो कुछ टेढ़ी बातें हैं, लेकिन ये मर्यादा वाले सरकार सीधे सादे भोले भाले है, सबको पसंद आए, सबको समझ आए, इन पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं है। हाँ, कुछ तार्किकों ने इनको भी नहीं छोड़ा, उनका तो धंधा ही यही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करें, ऐसे लोगों को क्या कहिए जो न कभी आए लाए चुल्लू भर पानी। एक कवि ने कहा है कि ऐसे लोगन को क्या कहिए जो कभी लाए नहीं चुल्लू भर पानी, और बैठे बैठे उनकी निंदा करते हैं जिन गंगा आनी, जो गंगा लाए है उनकी ताकते है। तो इन लोगों को तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, तार्किकों को। कहते ना राम भी सीता के पीछे पागल थे, वो भी क्या कहते ना, वो भी श्रेण, वो भी कहानी, इसीलिए तो पत्थरों को पूछ रहे हैं। इस लीला पर तर्क किया है मूर्खों ने। सदगुरु के आश्रम में सत्शास्त्र का जिसने संग नहीं किया, जिसकी मति कुमति है, उन मूर्खों की ये सब बातें हैं। वैष्णव को इन कुसंग से जरूर बचना चाहिए और परंपरा में आने वाले पवित्र वैष्णव से सही शास्त्र को पूर्ण यथार्थ रूप में सुनना चाहिए। आधा नहीं, ऐसा नहीं आधा क्लास का प्रसाद के लिए चला गया, पूर्ण सुन लेना चाहिए क्या क्या है, अनाउंस भी सुनना है। महाप्रसाद पूर्ण करना है, हम लोग फटाफट 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 में ऐसे ही मृत्यु फटाफट हो जाएगा। थोड़ा धैर्य से, धीर धीर की कितनी महिमा है। धीरज तत्र धैर्य कहाँ जाना है भास्कर, कुछ भी हो वहां आश्वासन, कुछ भी करो दिल से करो, जब करो दिल से करो, कथा सुनो दिल, महाप्रसाद तो जैसे दिल से ही लेते हैं ऐसे ही ऐसा नहीं ये भी आधा किया वो भी आधा किया ये कर लो वो कर लो बस भागता ही रहा, कल की चिंता में आज को भी खो गया। कुछ लोग संडे को भी उदास रहते, बोले कल काम पे जाए, कल जाना है ना, आज तो इधर आके महाप्रसाद था, आज से भी टेंशन को ले रहा है। ऐसे नहीं, जो होना है वही सोई जो राम रचि राखा, ठाकुर जी गिरधारी जो चाहे वो होगा, और हमारे चिंता से कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर क्यों बेकार में चिंता करें। हरि बोले, चिंतन करें कृष्ण का, ये भक्तों का मूड होता है। तो भगवान राम का चरित्र बड़ा सुंदर है। रघुवंश भूषण राम चरित जे नर गाव ही कह ही सुन ही, जो सुनता है जो कहता है जो गाता है रघुनाथ के इस पावन पवित्र चरित्र को, कलि मन मनोमल धोई से ही नर परम पद को पावही, कलयुग के सारे कलमश को धोकर वो मनुष्य परम पद को पा जाएगा। कौन? जो कृष्ण जो राम के चरित्र को कह ही सुन ही, और फिर कहा सुना जो याद रहा हो प्रसाद की लाइन में भी गाएगा, ट्रेन में भी गाए, गाना भी है, कह ही सुन ही गाव ही ते नर परम पद, परम पद को पाना है तो ये सरल विधान है कि राम लीला को सुना जाए, पहले तो सुना जाए, कहा जाए, गाया जाए। इसको सुखदेव जी गंगा तट पर गा रहे हैं, ये श्लोक पद्य में है, गाया जाता है छंद के साथ, ये अनुष्टुप छंद में है, गाया जाता है। लेकिन चलो गाना ना आए तो गुनगुनाना है, और आप लोग सबको पता है गाना ना आए करते ऐसे ही कर देना है, ऐसे होता ना संगीत में आते पता नहीं है तो गड़बड़ 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 खत्म क्यों ऐसे ऐसा चलता है? क्योंकि भाव ग्राही, क्योंकि हमारे से भगवान भाव समझ जाते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत देते रहे, एक बच्चा भी आकर उसको कुछ नहीं पता एबीसीडी क का बोलता है, बोले स्तुति आप बना लेना, ऐसे भाव की बातें तो यहाँ तक दृष्टांत दिए जाते हैं। ठीक है वहां तक तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये तो समझ सकते हैं कि स्मरण किया जाए भगवान के गुणों का। सबसे बड़ी निधि संपत्ति यही है, अपने को पावन करने की, शुद्ध करने की, गति दिलाने की। इसलिए तो सुखदेव जी शास्त्र सार मर्मज्ञ ऋषि है, और जहां वो सुनने वाले भी सब शास्त्र तत्ववेता ऋषि बैठे हैं, लेकिन वो सब न्याय मीमांसा और ये सब लेकर नहीं बैठे, राम कथा सुन रहे, भागवत सुन रहे, ये सब ऋषि लोग नहीं तो एक एक के दर्शन के वो सब गुरु है। लेकिन सार क्या है? निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये भागवत कृष्ण कथा है, राम कथा है, ये सार। इसलिए वैष्णव के समझते हैं समय कम है, इसलिए सारम सारम वेदा इतिहासानाम सारम सारम समुद्धितय, सुखदेव जी ने वेद पुराण इतिहास का सार सार भागवत दे दिया है, कथा दे दिया है रामायण, इसको खा इसको पीना इसको सुनना, यही जीवन होना चाहिए हमारे गोस्वामी का, यही जीवन आदर्श है। सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि हे राजन तस्यानुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी, भगवान श्री राम के पावन निर्मल यश चरित्र को अनेक अनेक ऋषियों ने तत्वदृष्टा साधुओं ने बहुत गाया कहा सुनाया है, इसलिए वर्णितम भूरी बहुत कहा है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रु के ये चार, यही भगवान चार स्वरूप में प्रकट हो गए, जीव कोटि के नहीं है भरत लक्ष्मण आदि भी, विभिन्नांश नहीं है स्वांश है, कई पुराणों के उपनिषदों के श्लोक इसके प्रमाण में है, कई कई ऐसा भी लिखा है कि भगवान के अस्त्र शस्त्र ही राम लक्ष्मण भरत भरत शत्रु के रूप में। और फिर कहते हैं गुरु अर्थे त्यक्त राजर्थो, धर्म की रक्षा के लिए पिता की आज्ञा के लिए त्यक्त्वा सुदुष्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, अयोध्या के इस महाधन पद को भी राम जी ने छोड़ दिया और कहां चले गए? वनम वन में चले गए। तो इस तरह की भागवत की श्लोकों में राम चरित्र को संक्षेप में सुनाया गया। मजे की बात यह है कि भगवान जब राम राजा थे इस पृथ्वी पर तो सुखदेव जी ने इसके आगे के श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कही कि परीक्षित जब राम थे, रामे राजनी धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावह, धर्मज्ञ राम जब राजा थे तो सर्वभूत सभी जीव, मतलब ऐसा नहीं केवल मनुष्य, ऐसा नहीं कि मनुष्य में बूढ़े ही स्त्री, जीव मतलब पशु पक्षी सर्वभूत सुखावह, सब सुखी थे, आनंद में थे। अब इसकी क्या बात कहे, प्रकृति की बात कहते हुए भी सुखदेव जी ने कह दिया कि वनानी नद्य गिरय, ये जो पर्वत है, नदी है, वन है, वर्षानी द्वीप संधव, ये जो समुद्र है सात द्वीप से मंडित, ये पूरा भूमंडल भगवान श्री राम के राज्य होने के कारण सर्व काम दुधा आसन। हे भरत शव भरत वंश कुलभूषण, हे राजन परीक्षित, क्योंकि तुम भी क्षत्रिय हो, तुम भी राजघराने के हो, तुम भी राजा हो, और परीक्षित के राज्य में भी ऐसा था। भागवत के प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय में यही वर्णन है कि सर्व काम दुधामयी, परीक्षित के राज्य में भी पृथ्वी सारा उत्पादन, सारी प्रजा सुखी थी, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। और इसका इसका और मार्मिक वर्णन दिया है कि न्याधि व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक भयक्लमा मृत्यु नासिद। देखिए न आदि न व्याधि, व्याधि मतलब शरीर का कष्ट, आदि भौतिक मन का, मन में भी दुख होता है और कभी कभी शरीर में दुख होता है, लेकिन राम जब राजा थे तो कोई जीव किसी को भी न आदि थी न व्याधि थी। आज तो कोई भी पुरुष व्याधि से मुक्त नहीं, आप सत्संग में भी बैठे हो, 10 मिनट ऐसे बैठे रहो व्याधि चालू होगा कोई अंग में, होता है ना, क्योंकि व्याधि शून्य कोई नहीं। और आधी तो मन में चिंता तो भरी पड़ी है, लेकिन राम राज्य में किसी को कोई टेंशन नाम की कोई वस्तु ही नहीं, चिंता नाम का कोई तत्व ही नहीं, क्योंकि राम जे आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है वो प्रकट हुए हैं, और उनके साथ जो है तो उनको कहां दुख हो, उनके नाम लेने वालों को दुख नहीं रहता, तो वो जहां हो वहां कहां दुख हो। लेकिन बात यह है, एक भक्त तो इनकी व्याख्या करते हुए कह रहे थे कि राम राज्य में तो किसी को छींक भी नहीं आता था। अब बोलो सर्दी जुकाम बड़े बड़े रोग कैंसर और डायबिटीज जो आज सबके सबको फैल कर दिया है, बीपी डायबिटीज ये सब, वो तो उसकी बात छोड़ दी, सर्दी जुकाम भी किसी को नहीं, छींक भी नहीं आती थी, कोई रोग ही नहीं राम राज्य में, न व्याधि न दुखम न शोकम न भयम, किसी का डर नहीं। क्लमा एक शब्द इतना हमें चिंतन कराता है कि क्लमा थकावट भी नहीं, कोई व्यक्ति कितना वो काम करता था थकता ही नहीं था, आयोडेक्स की जरूरत ही नहीं, कोई दवा दारू किसी की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरु जी कथा कहते थे, एक भगत प्रश्न पूछा तो सारे डॉक्टरों का क्या होता होगा, उनका उनका क्या होता होगा, महाराज महाराज बोले तो जरूरत ही नहीं थी उस समय डॉक्टर ही पढ़ना की नहीं पैसे, फिर भी वैध होते थे, लेकिन उस समय तो बड़ी ऊंची बातें थी, उस समय तो शिक्षा और दवा तो सेवा सेवा धर्म के नाते फ्री में होता था, लूटने का काम तो आज चालू हुआ है शिक्षा के नाम, स्कूल कॉलेज सेवा विद्यार्थी को पढ़ा लेंगे थोड़ा थोड़ा जाता है पैसे के लिए हॉस्पिटल, और कोर्ट की से तो बात ही दूर, उससे तो दूर से ही प्रणाम करिए वकील है ना, ये तीनों फ्री थे, लेकिन आज यही सबसे बड़े कमाने के साथ, तो वही तो होते थे, लेकिन वो निशुल्क और स्वार्थ शून्य सेवा भाव से। लंका का वेद की कथा है ना, वो आया और बताया प्लान, हनुमान जी गए दवा लेने, उस समय वेद तो होते थे नहीं है, लेकिन यहां पर न क्लमा कोई थकावट भी नहीं दिया, इतने ही नहीं हे राजन मृत्यु अनिच्छता आसित रामे राजन अधोक्षजे, इंद्रियों से अतीत श्री भगवान श्री राम जब भूतल पर प्रकट हुए तो अनिच्छता, अगर आपकी इच्छा न हो तो मृत्यु न आसित, मरते भी नहीं थे, वो चाहेगा तब मरेगा, बोले सबको विष्णु पितामह तेरा वरदान मिल गया, ऐसे ही द्वापर में हमने सुना कि एक व्यक्ति को शांतनु महाराज ने अपने पुत्र को दिया कि तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं मरोगे। बाद में तो कोई सुना आप लोगों ने दूसरा कोई ऐसा? एक प्रेमज है भीष्म का कि शांतनु महाराज ने आशीर्वाद दिया। शांतनु महाराज भी कितने उज्जवल चरित्र रहे होंगे जो इतना आशीर्वाद दे सकते हो। अरे गंगा जिसकी पत्नी पर उनके लिए क्या कहना है, उसका भी पड़ा माव पावन मधुर चरित्र भारत में है। वो पहले क्या राजा थे और क्यों शांतनु बने, और उनकी भी बड़ी कृष्ण के चरणों में भक्ति थी। भक्ति के प्रताप से ही कुछ भी आशीर्वाद वरदान देने के समर्थ बनता है व्यक्ति। इसीलिए तो साधु संतों के वैष्णव के आशीर्वाद की महिमा है, नहीं तो भिखारी लोग तो कहते रहे जा तेरा 10 लाख देगा क्या देगा तेरे को, नहीं देगा उनके आशीर्वाद थोड़ी फलते हैं। नहीं तो भिखमंगे तो देते ही रहते ना आशीर्वाद, लेकिन उनकी क्या वैल्यू है। जो कुछ तप भजन बल साधन किया है तो उनकी वाणी को भगवान सार्थक करते हैं, इसलिए वैष्णव के आशीर्वाद। लेकिन देखिए यहाँ रामलीला राम कथा उस त्रेता का सुवर्ण काल कहा जाएगा कि न आसीत मृत्यु राजा। देखो भागवत किसी भी विषय में प्रमाण है। सुखदेव जी को ऐसा नहीं कि भाव में आ गए और बोलने लग गए, ऐसे बिल्कुल होशो आवाज में बोले और सारे ऋषि सुन रहे सब वेद तत्व देता, कोई गप नहीं चलाया जा रहा। राम का ऐसा प्रभाव था, जब लीडर जब राजा जब नेता धार्मिक हो पवित्र हो तो जनता अपने आप सुखी रहती। दुर्लभो वैष्णव राजा दुर्लभो वैष्णव नारी, कुछ बातें स्त्री और वैष्णवी बन जाए दुर्लभ, राजा और भगत हो दुर्लभ। ये बताया गया कौन कौन, दुर्लभ हो वैष्णव हो विप्रा, ब्राह्मण हो और वैष्णव हो, ब्राह्मण हो बहुत कम चांस है और विशेषकर कलयुग में होते नहीं है। अब ये समय तो यही आ रहा है ना, सारा मीडिया ये सब क्या चल रहा है, इलेक्शन सब जगह, कोई ये वाला कोई उदी कोई वो, सब अपना अपना चला रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी रामायण के माध्यम से रामचरित्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि अगर धर्म का पालन करने वाला शुद्ध पवित्र राजा हो तो प्रजा अपने आप भगवान की कृपा से सुखी रहती है शांति रहती है। भक्ति से ही सारा वातावरण शुद्ध हो सकता है, बिना भक्ति के। वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति बिना, चैतन्य महाप्रभु के शब्द है कि बुद्धि शुद्ध निर्मल कृष्ण भजन के अलावा हो ही नहीं सकती। और जब अपनी बुद्धि शुद्ध नहीं है हम दूसरे को क्या समाज को या मनुष्य कैसे शुद्ध करेंगे बताओ। इसलिए रावण जैसा राज्य, और व्याख्या में आप लोग सुनते भी होंगे कि सब राम राज्य की कामना करते हैं चाहते हैं जानते हैं मानते हैं कि बड़ा पवित्र निर्मल सुखी राज्य था, आज भी ऐसा हो जाए। लेकिन प्रभुपाद कहते बिना राम के चाहते, ये कैसे होगा भाई। राम राज्य तुम चाहते हो तो पहले राम को चाहना पड़ेगा, राम होगा तभी राम राज्य होगा ना। तो अब क्या करे राम, बोले राम का नाम और राम उसमें कोई भेद, और राम का नाम नाम हरि नाम संकीर्तन होगा तो अपने आप राम राज्य हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे प्रभुपाद इसके तात्पर्य में हरि नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। राम का अवतार कृष्ण का अवतार कलयुग में है, लेकिन किस रूप में है, अपने नाम के रूप में। जो भी इसका आश्रय लेगा वो सुख संपत्ति आनंद को पाएगा अपने आप, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजयो, सब उधर जहां कृष्ण है, मतलब जहां कृष्ण का नाम है अनायास होगा। लेकिन लोग बिना राम के राम राज चाहते कभी नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री राम एक पत्नी, इसके बाद ये श्लोक है, एक पत्नी व्रत धरो। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में एक पावन पवित्र व्रत लिया था कि मैं एक ही पत्नी धारण करूंगा। ये एक पत्नी व्रत धरो सीधा समझ में आ जाए ऐसा शब्द है कि मैं एक ही पत्नी को स्वीकार करूं। प्रभुपाद जी लिखते कि उस समय राजा और क्षत्रिय लोग कई रानियां करते थे, इनकी तो आप जानते ही 16108 लीगली रेशन कार्ड वाली, उसके बाद गोकुल का कोई नंबर नहीं है अनलिमिटेड, लेकिन रेशन कार्ड वाली इतनी तो है। जिसमें नाम चढ़ता है, तो इसके पहले जो भी राजा की कई की 10,000 कई की आप सुने हैं ना, ऐसे भागवत में भी कई चरित्र है, कई राजा के समय इसकी इतनी रानियां इतनी रानियां, ये सब उस समय। हाँ, और क्यों? क्योंकि वो लोग संभाल सकते थे भाई। आज तो एक को भी संभाल ले उसको वीर कहा जाए बिना कंप्लेन के, हो नहीं सकता है। तो राजा लोग कर सकते, समर्थ थे, लेकिन भगवान उस अवस्था में ऐसा नहीं, कोई रोक टोक नहीं थी, यहां तक उनके पिताजी दशरथ महाराज जी भी कहता, लेकिन फिर भी भगवान ने एक आदर्श गृहस्थ निभाने के लिए अपने जीवन में। और ऐसा नहीं कि सीता जी अपनी अतरंगा शक्ति स्वरूपा है, अपनी ही शक्ति है। प्रभुपद यहां तक लिखते हैं कि भगवान, क्योंकि भगवान जैसे अनंत बन सकते हैं, ऐसे ही उनकी शक्ति भी अनंत रूप ले सकती है, हजारों सीता बन सकती है, लेकिन भगवान ने ना वो प्रकट करने को कहा, ना सीता जी ने अलग रूप बनाया, क्योंकि उनको ये स्थापित करना था एक पत्नी व्रत धरा। अब पंचमी स्कंद में, पांचवा स्कंद 19वां अध्याय 5 नंबर श्लोक 5:19-5 मर्त्यावतार स्पृह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधाये वन केवलम् विभो। श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं मर्त्य अवतार, आपने मनुष्य अवतार लिया। प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं वहां पर कि रावण अनेक वरदान मांग चुका था, लेकिन मनुष्य से मरूंगा ऐसा नहीं मांगा था, कि मनुष्य को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझता था, ये क्या करेंगे दो हाथ पैर वाले बिना दिमाग वाले, इसलिए उनको फालतू समझता था। उसने सुना था कि पहले सिंह ने मार दिया, पहले सुअर ने मार दिया, इसको मार दिया, सत्यों की हिस्ट्री सब चेता ने वो पढ़ा सुना था, तो ये मनुष्य क्या चीज है। इसलिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया, मर्त्य अवतार, लेकिन मर्त्य शिक्षण, मानस अवतार लेकर मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। रक्षो वधाये व न केवलम विभो, हनुमान जी कहते हैं कि हे विभो, भगवान विभो है और हम क्या है, अणु है, पार्ट एंड पार्सल, हम अणु है, अणु कभी विभो नहीं हो सकता, जीव कभी भगवान, ये अज्ञान भी चल रहा है आजकल। कहा कृष्ण पूर्ण माहेश्वर और कहा शूद्र जीव माया रकिंकर, चैतन्य चरितामृत, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सबको नचाते हैं, क्योंकि ये बहिरंगा प्रकृति उनकी है, मैं यज्ञक्षीण प्रकृति, यस्य आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य चंद्र भी आपकी आज्ञा से गति करते हैं, कपिल भगवान कहते हैं मृत्यु नचरति काल भी मेरे अधीन है, काल के भी काल है कृष्ण, और ये जीव बेचारा वड़ा पाव खाने वाला, ट्रेन में धक्के खाने वाला, परसीना से तत्पद, वो जीव शिव भगवान हो जाता है। क्या मूर्ख लोग है पता नहीं दुनिया में, दिमाग किसको भाड़े पे दिया है राम जी जाने, कुछ भी कुछ बोलता है उल्लू बना, बस मान लेते हैं विषय में, और भगवान को हटा के उनका फोटो रख लिया है। ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए, सीधी बात है। हनुमान जी कहते हैं विभो रक्षो वधाये, आपने कहा है कि विनाशाय से दुष्कृतम, लेकिन असुरों को मारने के लिए आप आते हो, के एक कारण है आने का, अवतार का एक प्रयोजन है, लेकिन केवल यही नहीं है कि राक्षसों को मारना है। मर्त्य अवतार आपका जो हुआ है, मर्त्य शिक्षणम, मानव समाज को मनुष्य बनाने के लिए, वैष्णव शिक्षा देने के लिए आप मानव बने हो। और उसके बाद तो बड़ा सुंदर हनुमान जी कहते उसी श्लोक में, कुतोन्यथा स्याद रमते स्व आत्मना सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। अन्यथा स्व आत्मना, आप पूर्ण काम, आत्मा राम है, आपको आनंद, आप आनंद स्वरूप से ही आनंदमय है, किसी व्यक्ति या वस्तु की द्वारा आनंद लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप आत्मा राम है, पूर्ण काम है, तो स्व आत्मन एव रमते, आप अपने स्वरूप में आनंद करने वाले हैं। फिर सीता कृतानी व्यसनानी ईश्वरस्य, आप ईश्वर होकर भी सीता का वियोग में व्यसनानी दुख प्राप्त किए। सीता जी जब रावण हर ले गया तो राम जी बड़े दुखी थे, लखनलाल भी उसके साथ दुखी थे। तो आप ये पत्थरों को पूछ रहे, पेड़ों को पूछ रहे, दुखी हो रहे, इस पत्नी कहां गई, सीता सीता विरह में रो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, जबकि आप पूर्ण काम आत्मा राम है, ईश्वर है, कैसे? ये समझ में नहीं आता, क्या कारण है ऐसा करने का? कारण आपकी प्रिया को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, चांदनी को चंद्रमा से कोई अलग कर सकता है क्या? क्या क्या प्रकाश को कोई आग से अलग कर सकता है? हो नहीं सकता ये, ऐसे अगर चाहे वो हो भी जाए, लेकिन भगवान से उनकी प्रिया को कोई अलग नहीं कर सकता। कोई श्राप, कोई ऋषि, कोई वरदान कुछ नहीं करता, लेकिन आप चाहते हो लीला करना, उसके द्वारा मैसेज देना, तो हो सकता है। इसलिए मत्स्य अवतार जय श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। इन मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आपने पत्नी के विरह में दुख उठाया, तो क्या शिक्षा दिया? बोले शादी करोगे तो रोना पड़े, दैट इज द मैसेज ऑफ राम कैरेक्टर। राम जी के चरित्र का ये बड़ा सुंदर मैसेज हमारा नहीं है खड़ा हुआ, हनुमान जी का है। और आप पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं 5:19-5। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राम जी सिखा रहे हैं कि वैष्णव को चाहिए कि बिना स्त्री के बेहतर सुंदर जीवन जिए। बाप रे, कौन कौन बोला? और कुछ लोग तो ऐसे कि ये संदेश ये मैसेज बाद में मिल रहा है, क्योंकि ये सब तो हो गया है, अब उनके लिए क्या है ये? तो चलो, ये तो कुछ बच्चे कुचे के लिए है, जो बच्चे हैं, जो अभी बच्चे हैं इस पाप अतिजातन से, इस सुनामी से, उनके लिए चलो ये मैसेज काम करेगा, तो फिर भी इतना नहीं, क्योंकि मानने सुनने वाले है नहीं, लेकिन लेकिन जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, वो ऐसा करते क्योंकि वो चाहते सुख, सुख चाहता है जीव, क्योंकि तो सुख में उनका स्वरूप है, लेकिन सुख किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो नहीं जानता। सुख किससे मिलेगा? जिसका वो है उसी स्वरूप से उसे मिलेगा। वो आत्मा है तो परमात्मा से ही सुख मिलेगा, वो सच्चिदानंद तो सच्चिदानंद वस्तु से ही सुख मिलेगा, लेकिन वो आत्मा होकर जड़ पदार्थ और जड़ वस्तु से कैसे सुख प्राप्त कर सकता है? ये उसकी मूर्खता है। इसलिए क्या कर रहा है कि वो कोई स्त्री को चाहता है और स्त्री के द्वारा बस भोग चाहता है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक श्लोक डाला है वहां पर 7:9:45 प्रहलाद स्तुति, यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम हितुच्छम कंडूरयो नैव। जो एक एक गृहमेधी है वो मैथुन सुख चाहता है, क्यों? वो तो तुच्छ सुख है, सबसे थर्ड क्लास सुख है, जिसको हायर बना दिया गया, जो शरीर की बुद्धि को, इंद्रियों को, धर्म को छीन लेता है, हमारे खून को कम कर देता है, बुद्धि के प्रभाव को नष्ट कर देता है, लेकिन शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सब रूप में हानिकारक, उस चीज को सुख मान रहा है, फसावट की सबसे बड़ी चीज को सुख मान बैठा है, मूर्खतावश। चमड़े को छू लेना, उसको उसको छू कर या उसको चूमकर सुख मानना, हड्डी को चूमकर सुख मानना, कौन सी बुद्धिमानी आप बताइए? लेकिन मूर्खता है उसकी, वो समझते हैं, क्योंकि माया के रजोगुण, रजोगुण कामेश क्रोधेश उसका गुलाम बन चुका है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। लेकिन प्रहलाद जी कहते तुच्छम, ये कैसा है? तो उदाहरण देते, कंडू यानी कंडू, जैसे किसी को कोई रोग हो जाता है, जिसे आपको पता है खुजली होता है ना, कभी कभी कोई घाव लगा है या छोटे छोटे क्या दाग खाज खुजली, चिकन पॉक्स, और बताओ नाम बताओ क्या क्या, दुख दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु चढ़ावे आदि। लेकिन बताने के लिए नहीं, आप अपने लिए, ओके, समझ रहे ना आप लोग, बचे हो बचे हो, हम तो फंसे हैं, आप बच्चे हो बचे हो। जो फंसे हैं उनको क्या कह रहा है, लेकिन जो बचे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। कुमारे आचरित प्राज्ञ, प्रहलाद ने ये भी तो कहा, बालपन से ही भजन कर लो भाई, पता नहीं फिर वो करने देगी कि नहीं। प्रहलाद ने ऐसा कहा है अपने असुर बालकों को कि फिर पता नहीं क्या होगा। तो मैं कह रहा था मूल रूप में कहाँ था, मध्य अवतार तो था, लेकिन ये कंडूरी खुजली वाली बात है ना। तो खुजली आप सबको बताए, खुजलने में आनंद आता है, क्योंकि रोग ऐसे तो आपको कुछ भी आप खुजलना, लेकिन खुजलाने का कारण परिणाम क्या आएगा, और घाव बनेगा और ऊपर से वो पीड़ा देगा। खुजलाना जिसको आप सुख मान रहे हो, कंडू बोलते हैं इसको संस्कृत में, कंडूरियो करियो दुख दुखम, वो दुख का मूल दुख हो जाएगा। जैसे भगवद गीता, जो इंद्रिय भोग को मनुष्य सुख मानता है, भगवान कृष्ण कहते हैं दुख योन्न लेवते, 5:22 भगवद गीता। कृष्ण कहते हैं कि आदि अंत अंत कौन तो यह न चेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं रमता। बुद्धू की बात छोड़ दो, एक बुद्धू होता है और एक बुधा होता है, बुद्धि और बुद्धू, जिसके पास नहीं है वो बुद्धू, वहां बुधा शब्द है, बुद्धू नहीं है बुधा। बुद्धिमान क्या कहता है कि इन इन विषय भोगों में नहीं रमता, यही संस्पर्शा भोगा, स्पर्श करके सुख जाना चाहता है, चमड़ी का सुख चाहता है, छूकर देखकर संस्पर्शा भोगा, लेकिन दुख ही दुख, दुख की माँ है, और भारी दुख आएगा इससे। और एक दिन वो सुख जिसको मान रहा है वो सुख तो अंत हो जाएगा, खुजलाने का सुख मानता है वो तो चला गया, ऊपर से दुख आ जाएगा। तुप्यंती बहु दुख कृपण एव, प्रहलाद कहते हैं कि वो कृपण समझ नहीं पा रहा है कि और वहां दुख पाएगा, इसलिए कंड एवं मन से विसहेत धीर, प्रहलाद नरसिंह भगवान से कहते हैं कि धीर पुरुष इस पर विचार करता है और इस दुख इस सुख से दूर रहता है। तो अब क्या हुआ, जैसे एक शिक्षा भगवान कह रहे कि स्त्री से दूर रहे, लेकिन जो हो गया है तब दूसरा पार्ट, दूसरी शिक्षा राम जी से, क्योंकि राम जी भी तो शादी कर दी है, ब्रह्मचारी होकर शिक्षा देते तो कुछ मान लेते, भाई गृहस्थ तुम खुद शादी किए कैसे मानेंगे हम, ऐसे भी होते ना, मनुष्य का दिमाग तो भाई यमराज को भी पीछे छोड़ देता है। भगवान कहे कि बिना स्त्री के सुखी हुआ जा सकता है, ये मेरा मैसेज है, तो हम लोग कहेंगे आपने क्यों किया, तुरंत कहेंगे कि नहीं, तो भी दूसरा मैसेज मरते, आपका कुछ भी लीला है शिक्षा के लिए, तो अब ये शिक्षा, दूसरा शिक्षा क्या, पहला तो बेस्ट शिक्षा है लेकिन वो नहीं माना, तभी सेकंड शिक्षा कि अगर पत्नी है तो पत्नी व्रत धरा, इसमें शब्द है, जैसे अपने पत्नी की रक्षा करना ये उसका धर्म है। इसीलिए भगवान चाहे तो हजारों सीता कर सकते लेकिन नहीं प्रकट किया। क्या किया उसने, विश्वनाथ ठाकुर की टीका है, और प्रभुपाद ने ऐसे भी टीका का हिंदी इंग्लिश दिया है अपने तात्पर्य में, इस 5:19:5 की बात मैं कर रहा हूं। प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्वनाथ ठाकुर का भाव है कि भगवान राम दूसरी शिक्षा दे रहे कि अगर विवाहित है गृहस्थ है तो उसे चाहिए कि अपनी पत्नी को धर्म में लगाए और उसकी रक्षा करे, फिर उसके लिए उसको लंका पार रावण से भी लड़ना पड़े तो कोई बात नहीं करे, उसके लिए रोए, तीसरी शिक्षा है, लेकिन अभी सेकंड है उसकी रक्षा करना, क्योंकि रक्षा की ना भगवान राम ने, ये शिक्षा का तो आज लोग उल्टा लगे, बोले रक्षा क्या करना, चलो काम फेरी फ्री, लेकिन ऐसे नहीं, धार्मिक है ना, गृहस्थ थे, जब कर्तव्य निभाना है तो एक पति का पूर्ण धर्म निभाना है, और पति पति पत्नी को धर्म में लगाए उनकी रक्षा करे, ये पति का धर्म है। और रामचंद्र जी अपने जीवन से ये सिखा रहे हैं कि सीता के अलावा कहीं दूसरी स्त्री में उसका मन नहीं। देखो पत्नी व्रत धर एक शब्द बड़ा दिमाग आउट कर देता है, इस पर बहुत विचार किया गया है संतों के द्वारा, बोले पतिव्रत धर्म का कैसे सिखाया जा रहा है, पतिव्रता धर्म सिखाना चाहिए पत्नियों को, ये लोग तो ऑलरेडी पत्नी धर्म है ही इनका, सारे लोग सारे पति पत्नी के अधीन ऑलरेडी है, ऊपर से सिखा रहे हैं कि और अधीन न हो, व्रत धर्म पत्नी को रक्षा करो संभालो, यही धर्म और सिखाया जा रहा है, ऑलरेडी वही कर रहा है विचार सिखाना का, तो इस तरफ है इस पार्ट में है, तो ये क्या बात हो गई, इस उल्टा विचार किया जा सकता है ना, ये कौन सी बात सिखा रहे हो कि पत्नी का व्रत पत्नी को धारण करो उसका पालन पोषण करो यह व्रत ले लो, इसका सार ये नहीं है, इसका सार ये है कि अपने पत्नी की रक्षा पालन करो, उसके अलावा किसी और स्त्री में पर द्वारेशु मातृवत, दूसरी स्त्रियों के पीछे क्या भाव है मातृ, चाणक्य का सूत्र है ना, चाणक्य का है ये श्लोक, मनु महाराज ने भी कहा है, लेकिन चाणक्य का प्रसिद्ध है, पर द्रव्येश लोष्टवर और पर पुत्री देव को माँ के समान देखना, चाणक्य ने ऐसा कुछ कहा है। और हमारे नरसिंह मेहता ने वैष्णव के लक्षण में भी ये बताया है, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मातरे। वैष्णव किसे कहते हैं? जो सम दृष्टि होता है, सबके प्रति समान, सबके अंदर भगवान देखता है, सबका आदर करता है, और कोई कामना तृष्णा नहीं, किसी के साथ कपट करके अपनी अपनी भोग वासना इच्छा पूरी कर लो, इस मूड में वैष्णव नहीं घूमता। और पर स्त्री, दूसरी स्त्री उसके मन में क्या है? मां। और एक बात बड़ा सुंदर कहा है इसी इसी भजन में, इसी के पीछे वाली लाइन, जीव हाथ की असत्य न बोले, कभी जीव से झूठ नहीं बोलता अगर वैष्णव है तो। पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो से मेरे कहिए। वो पराए धन पर, पराई स्त्री पर उसकी नजर नहीं होती। एक कवि ने बड़ा संस्कृत में भी इसको कहा है, पर स्त्री पर धन व्यांछा त्यजस्वम भजस्वम रमानाथ पादार विंदम। हे मूर्ख मनुष्य, काल तेरे पीछे लगा हुआ है और तू मृत्यु की गाल में जा रहा है, तेरे तेरी घंटियां बज रही है। अभी हमें अभी हमें आ रहे थे, दो दिन पहले मैं जा रहा था तो एक गाना बज रहा था, घंटी बजी, पता नहीं बजा ना, आपको पता होगा एंट्री तो घंटी बजी। मुझको याद आया मंदिर में भी यही होता है, हम लोग जाते तो घंटी तो बजाती है गिरधारी को, लेकिन मौत की घंटियां बनती है, मौत घंटी बजाता है पहले, तुम्हारे बाल को सफेद कर देता है, पहली घंटी बजाता है कि देख भैया, सफेद कर करके फिर निकलना चालू होता है। फिर दूसरा घंटी क्या बजाता है? आंखों से मोतिया बिंद ला देता है, बेतालान तालान पालान बता दिए, उधर आंख में घंटी बजी, फिर भी इसका दिमाग नहीं खुला, फिर कमर में घंटी बजती है, फिर घंटी नहीं बजती, मौत का घंटा बजता है, ये घंटी से सुधरने वाला सही है। फिर काल क्या करता है? पकड़ता है। तो जब इस दशा में तुम हो तो फिर भी लगाए बजाए दूसरी स्त्रियों में नजर कर रहे हो, फिर भी दूसरों के धन के पीछे भाग रहे हो, कौन लेके गया साथ में? पर स्त्री पर धन वांछा त्यजत्वम, तुम्हारा मंगल चाहते हो तो इन इच्छाओं को छोड़ दो, फिर क्या करे? भजस्वम रमानाथ पादारविंदम, लक्ष्मी के नाथ श्री कृष्ण का माधव का भजन कर भाई, सुख उसमें है, आनंद उसमें है, कहां घूम रहा है? गरीब सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचे राजा सुखी, राजा सोचे महाराजा सुखी, महाराजा सोचता है इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है ब्रह्मा सुखी है, उससे ऊपर ब्रह्मा सोचता है विष्णु सुखी है, सबसे ऊपर भगत लोग कहते हैं, विष्णु कहते हैं मेरा नाम जपने वाले मेरे भगत सुखी है, इसके अलावा कोई सुखी है। सबका अनुभव ले लिया, आप गरीब का अनुभव ले लिया, धनवान का, राजा महाराजा इंद्र ब्रह्मा, विष्णु क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं कि जो आप भले मानो मैं सुखी हूं, सच्चिदानंद हूं, लेकिन जो मेरे नाम का कीर्तन गाता है, कथा सुनता है, वो वैष्णव जितना सुखी है उतना सुखी और कोई नहीं। इसलिए मैं भी भगत बनना चाहता हूं, इसलिए गौरांग भगत बनकर आए कृष्ण कि जो सुख कृष्ण के नाम में है, कथा में, वो तो भगवान बनने में भी नहीं है। और ये भक्त बनाने की संस्था है, इसको हम क्या बना रहा है श्री प्रभुपादी? वैष्णव बना रहा है। कितनी ऊंची अवस्था तक हमें लिया ले जाया जा रहा है शास्त्र। तो यहाँ पर एक पत्नी व्रत का असली अर्थ है कि दूसरी स्त्री, ये मूड है, एक पत्नी, इसलिए खाली पत्नी व्रत नहीं देखा, आगे क्या लिखा? एक पत्नी व्रत धरो। देखो समय सीमा के बाहर चला जाता है तो मैं इसको खत्म करूं, उसके पहले एक छोटी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर तो बड़ी लंबी लीला है, राजर्षि चरितम सूची, भगवान राम साधु राजा थे, ऋषि जैसे राजा थे, और इतना पवित्र उनका चरित्र था राम जी का, पूरी रामायण भरी है, महीनों सालों तक गाते रहो फिर भी उसका कोई अंत नहीं है, एकदम सरल चरित्र राम जी का। और क्या एक पुत्र को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, सब राम ने सिखाया है अपने जीवन। इसलिए यहां पर लिखा है शिक्षयन, शिक्षा दिया, स्वयं आचरित, अपने आचरण से शिक्षा दिया, प्रातः उठ के माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे राम, सिखाया अपने आचरण से, रामायण में लिखा है। पढ़ने गए गुरु के पास, सिखाया आपने, आज भी तो वेद के वक्ता स्वयं है, वेद उसकी श्वास से निकला, क्यों पढ़ने जाएगा। इतना बड़ा बड़ा काम करते, विश्वामित्र जी के साथ से एक आदर्श साधु, एक गुरु के रूप में उसको मान लिया, स्वीकार किया, तो विश्वामित्र की आज्ञा से ही काम करते थे। ऐसा नहीं कि सुबह केवल गाते थे गुरु वंदना में के तुम्हारे आज्ञा, फिर सारी आज्ञा का अनादर करते रहे, ऐसे नहीं, सिखाया। कितना निर्मल चरित्र, सुचि चरितम के ऊपर तो पूरी रामायण आ जाएगी भाई। गुरुवर शयन करई जब जा, जब विश्वामित्र सोने जाते थे जनकपुरी में, अपने ससुराल में भगवान गए, ससुराल तभी बना नहीं लेकिन बनेगा, जानकी जी से ब्याह होगा धनुष भंग के बाद, लगे चरण चापन दो भाई, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती है, शिव जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, योगिंद्र मुनिंद्र चरणों की वंदना करते हैं, वे राम स्वयं अपने गुरु के क्या कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, अपने सिखा रहे अपना आचरण। पूरी सभा में सारे राजा लज्जित हो गए, धनुषों को हिला नहीं पाया उस जनकपुरी में। भगवान राम ने जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ देता है, खेल खेल में तोड़ दिया, कोई जोर नहीं लगाना पड़ा उसको, लेकिन ऐसे धनुष तोड़ने में सामर्थ्य वीर, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं थी तब तक उठे नहीं। और गुरु जी ने कहा कि उठो राम, खड़े हो जाओ, भंजहु भव चापा, तोड़ दो शिव धनुष को। तब उठे भी तो कैसे, ऐसा नहीं कि तो चलो अभी बोला है ना गुरु जी ने, नहीं नहीं, बिल्कुल साधु चरित्र, खड़े होकर क्या किए, गुरु जी को पहले प्रणाम किए, राम जी आज्ञा हुई तभी खड़े हुए, लखनलाल तो कूद गए एक बार की क्या बोला जा रहा है, मैं इधर है, राम इधर है, बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन राम जी तो राम जी थे, बैठे रहे खड़े, जो राम अगर नहीं बोले हो तो खड़े ही नहीं होना, कुछ भी हो जाए। गुरु जी ने जब समय जाओ शुभ अवसर जाना आज्ञा दिया तब खड़े हुए, लेकिन खड़े होकर भी शरण सिर नावा, सुनी गुरु वचन, जैसे ही सुना खड़े हो गए, प्रभु जी आइए, तो हाँ हाँ आता हूं, तो अगले संडे गुरु जी बुलाते रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही सुना तुरंत खड़े हो गए, आज्ञा से अधीन है, चरण सिर नावा, तुरंत चरणों में प्रणाम करके गए, बोले क्या आज्ञा, जाओ गए। अरे पूरे क्रोध की मूर्ति बनकर आए थे रेणुकासुर परशुराम, लेकिन राम की वो मधुर मुस्कान, वो एकदम सरल साधु मुखड़ा, किसने तोड़ा धनुष, तो मेरे सामने लाओ। वो सारे राजा सोच रहे थे कि आज हम लोग गए काम, जब जनक जी ने कहा था कि निकल जाओ तब निकल गए होते तो पहुंच गए होते, थाली पीली बैठे रहे इधर, आज गए काम से। लेकिन राम तो शांत सिंह खड़क, उसको मेरे सामने लगे सबको मार दूंगा, लेकिन राम जी ने क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा, हो ही कई कोई दास, कोई तेरा तुम आपका भगत, आपका कोई दास ही तो ये काम कर सकता है, अपने को दास कह रहा है, इतना महान काम करने वाला तो परशुराम को भी कहेगा ना, जैसे लखनलाल जी ने कह दिया था कि आ जाओ। ये मतलब ये साधु ईश्वरी लीलाएं है राम जी की, आप साथ इस पर विचार करना चाहिए भक्तों को। यहां तक कि गुरु वशिष्ठ जाने जी ने कहा कि राम कल सुबह तुम्हारा राज्य अभिषेक है, कोई आनंद नहीं, दुखी हो गए राम जी। जन्म में एक संग संग जाऊ चारों भाई, हम लोग साथ जन्म लिए, भोजन साथ किए, पढ़ाई साथ हुआ, यहां तक शादी भी साथ हुआ था चारों का, जनकपुरी में ना मंडप तो चारों साथ में ही लगे थे, लेकिन क्या हुआ, राम जी कहते हैं विमल वंश यह अनुचित एको, ये हमारे रघुवंश का पावन पवित्र निर्मल वंश है, लेकिन एक बात हमको सुहाती नहीं है, क्या, बंधु बिहाई, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बनाया जा रहा है, उसको दुख हो रहा है। और इसीलिए जब वनवास का समाचार मिला ना कई कई जी के जहां दूसरे दिन, तो राम प्रसन्न थे, खुश हो गए, मेरे भाई को गादी मिलेगा भरत, तुम आज तो थोड़े के लिए कोर्ट में चले जाते हैं हम लोग। क्या रामायण का पावन चरित्र है। गोस्वामी ने वहां लिखा है कि जब राम जी रो रहे थे कि ये विमल वंश का ये काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कि बड़े को ही राज्य दे रहा है, छोटे को नहीं दिया जा रहा है, गोस्वामी लिखते हैं कि जो इस रामचरित्र को सुनेगा ना, राम के इस मंगलमय निर्मल सरल प्रेमी स्वभाव को, हरहु भगत मन के कुट लाई, अपने भक्तों की मन की कपटता को रामचरित हर लेगा भाई। रामचरित्र में वो शक्ति है कि भगत में कपट होगा ना इस तरह का स्वार्थ वृत्ति, ये सुनने से वो निकल जाएगा, सुधर जाएगा, वो यशस्वी बन जाएगा, श्लोक के प्रणाम में पूजनीय हो जाएगा। और जब वन को गए तो बड़े आनंद से प्रसन्नताया नगताभिषेक, कोई प्रसन्न मुख नहीं हो गया अभिषेक का समाचार सुनकर। आज देखो थोड़े काल के लिए थोड़ी जाति मिलने वाली, क्या क्या चक्कर चल रहा है दिल्ली में कुछ महीने के लिए उसके लिए, और ये पूरा अयोध्या का पद है, गया तो कोई दुख नहीं है, चाहिए प्रसन्न नहीं हो गए। तथा नमले वनवास दुख, और जब वनवास का समाचार मिला तो कोई दुख नहीं। मुखाम्बुजस्य श्रीरघुनंदनस्य मे, श्री रामचंद्र जी का ये जो मुखमंडल हंसता हुआ निर्मल एकदम समान सरल, सदास्तु में मंजुल मंगल प्रदा, हमेशा हमारे हमारा मंगल करे, हमारा भला करे, ये भी प्रार्थना की गई है ना वहां पर। ये है मतलब, ये सब मैं नहीं मन माना इसलिए बोली दिया संक्षेप में, ये कुछ झलक बता दिया मैं। और स्वधर्म गृह में दिया, गृहस्थ को कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे पुत्र पर कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पति सब निभाना है, स्वयं शिक्षयन, अपने आचरण से शिक्षा दिए, यह है भगवान श्री राम। और सीता जी तो इनको भी बढ़ के चढ़ के हो गई समर्पण में, सेवा में, राम जी को भी पीछे छोड़ दिया है तो उनकी बात पीछे गाई गई है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, प्रत्येक वैष्णव के लिए राम और सीता का ये पावन चरित्र सुनने, कहने, चिंतन, गायन करने लायक। एक अंतिम बात बताना जो मैं चाहता था कि एक पत्नी व्रत धर पर याद आ रहा था, हमारे कुछ भक्त अभी नवदीप धाम होकर आए हैं। नवदीप आप जानते होंगे, वहां पर गंगा जी नदी है पूर्व तट पर, ईस्टर्न साइड पर, गंगा जी के पूर्व तट पर चार द्वीप है, पूर्वे अंतरद्वीप सीमंत द्वीप है और श्री गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप, यही चतुष्टय। चार द्वीप गंगा के किस तरफ है, कौन से, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये चार द्वीप कहां हो गए गंगा के ईस्ट साइड। और अभी कितने बचे, नौ द्वीप है ना, तो पांच, कोल द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप और मुद्रुम, और चौथा मुद्रुम। श्री रुद्र दीप आर पश्चिम प्रचार, पश्चिम वेस्टर्न साइड, वेस्ट साइड में पांच द्वीप है, कोल द्वीप, दूसरा ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप और मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। इसमें जो ये ऐसे इस तरह से चौथा, टोटल संगति में आठवां मोद्रुम द्वीप है, जिसको मामागाछी कहा जाता है, वहां पर एक वट वृक्ष है। श्री राम जब वनवास के समय सीता जी के साथ आकर गए थे तो वही नवदीप मोद्रुम द्वीप में गए थे। नित्यानंद प्रभु भक्तिनाथ ठाकुर ने ब्रजमंडल नवदीप परिक्रमा में इस लीला को लिखा है कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी लेकर जब वहां मामागाछी गए तो बोले यही मामागाछी अयोध्या है, यही अयोध्या है। पूर्व जब राम वनवासी हुए थे लखन और जानकी के साथ यही आए थे और इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो वृक्ष तो फिर अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उसी समय वहां दूसरा वृक्ष हो गया, आज भी वहां वो स्थान। और तब क्या वर्णन है, वो सुंदर लीला है कि राम और सीता वहां बैठे, जब राम जी किस वेश में है, वनवासी के वेश में, नवदीप शोभा देखी श्री रघुनंदन। नवदीप की इन शोभा को देखकर रघुनंदन क्या कर रहे थे, अल्प अल्प हास्य करे, वो ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी नवदीप को देखकर। सुंदर पुष्प खिले हैं, वृक्ष खिले हैं, फल लगे हैं, मधुर मंदिर, पक्षियों का कलरव, बड़ा रमणीय मनोवरण नवदीप का वातावरण देखकर श्री रामचंद्र जी अल्प अल्प हास्य करे। और कैसे लग रहे हैं, आहा क्या सुंदर वर्णन दिया है वहां पर नित्यानंद प्रभु स्वयं कर रहे हैं राम जी के विषय में, के सिरे जटा सोहे, उसके सिर पर तो जटा बन गई, मुकुट नहीं है अभी, दशरथ अभी तो वनवासी का वेश है ना, तो जटा शोभा कर रही है और हस्ते धनुष, राजीव लोचन जैन और कमल जैसे खिले हुए नयन है उनके, और उसमें भी हंस रहे। तो सीता जी और लक्ष्मण जी ने दोनों ने मीटिंग किया, बोले ये हंस क्यों रहे, भगवान क्यों हंस रहे। तो लक्ष्मण जी बोले आप पूछो, सीता जी ने कहा सरकार ऐसे तो आप प्रतिदिन हंसते ही रहते, आपको भी जो देखता है, आपका नाम लेता है, आपका प्रसाद खाता है, वो भी हंसता रहता है, लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन ये तो हंसता ही रहता है। भगत जी, लेकिन आप हंसते क्यों हैं? उसने कहा, सीते यही स्थान है, इसी स्थान पर पीत वर्ण धारण करके मैं गौरांग अवतार लूंगा कलयुग में। ये यही स्थान है कि जो मेरा प्रिय स्थान है, अयोध्या से भी प्रिय स्थान है ये मधुरम द्वीप। और दूसरी बात, सीता जी भी खुश होगी, हो पीत वर्ण वाले आप बनेंगे, कैसे लगेंगे भाई आपका, हम आपका, हम भी आपका माधुर्य पियेंगे। अभी आप थोड़े हरे रंग के, उस समय पीले रंग के हो जाएंगे। तब तक राम जी ने कहा, लेकिन मैं सन्यासी इस रूप में जो तुम देख रही हो ना, उस समय ओरिजिनल सन्यासी बनूंगा। इस समय तो एक पत्नी व्रत धरो, उस समय नौ पत्नी। अब देखो कोई पत्नी, उसमें भी राम जैसा पति। सीता जी को तो क्या हो गया, आनंद जो था वो सूख गया, क्योंकि ओके गौर बनी उसकी चिंता नहीं, लेकिन सन्यासी बनूंगा और तुम्हारा संग छोड़ूंगा। सीता जी को तो अभी तो हार्ट अटैक की दशा आ जाएगी ना, कि कौन छोड़ना चाहेगा सीता जी को। बोले मैं सन्यास, सारी बात बता दी। सीता जी ने कहा, मेरा क्या ऐसा दोष है? बोले मैं सची माता कौशल्या उनके घर से आऊंगा, तुम विष्णु प्रिया के रूप में आओगी, लेकिन मैं तुम्हारा त्याग करूंगा। क्यों भगवान, क्यों ऐसी दया दंड? बोले हमारे कलयुग के जीवों के ऊपर दया करने के लिए तुम्हें मुझे थोड़े दिन दूर रहना पड़ेगा, लेकिन दूर रहने में प्रेम बढ़ेगा, एक दो विप्रलम्ब रस होता है ना, उस रस का तुम्हें आस्वादन मिलेगा, और उस समय तुम क्या करना, विष्णु प्रिया के रूप में मेरी प्रतिमा की पूजा करके प्रचार करना। तुम मुझसे दूर रहोगे सन्यासी बनकर, और मैं तुम्हारी मूर्ति बनाकर पूजा करूंगी, और मैं तुम्हारे विरह में रोऊंगी। बोले इसमें रस बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, और मुझे ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मीरा रोड वालों का उद्धार करना है। प्रभु एक बात, राम जी कहते लेकिन मैं रखूंगा नहीं, मैं इसी अवतार में तुम्हारी भी मूर्ति बनाकर पूजा करूंगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा सीता जी को भी, मेरे को भी मूर्ति, अपनी मूर्ति बनवा रहे, मेरी भी बना के पूजा करेंगे, ये क्या लीला? राम जी ये बोले गोपनीय लीला है, मीरा वालों को नहीं कहना चाहिए, परिक्रमा में गए उसके लिए ये, लेकिन मैं बोला करा देता हूँ परिक्रमा मधुरम धाम की। परिक्रमा मतलब वहां जाके सुनना, उन लीलाओं का रस लेना। भगवान श्री राम ने कहा, देखो सीते, जीवों के मंगल के लिए हम संन्यास दे रहे हैं, लेकिन इसी जीवन में भी मैं तुम्हारा त्याग करूंगा, और तुम जब वाल्मीकि के आश्रम में रहोगी तब तुम्हारी सुवर्ण की मूर्ति बनाकर मैं भी एक पत्नी व्रत धरा है। इधर ही नहीं, सीता जी चली गई उसके बाद ही नहीं, आने के बाद भी जब त्याग दिया भगवान ने, तब भी बहुत सारे विवाह कर सकते थे, क्योंकि राजा है, सब वशिष्ठ भी कह दिए उनको, गुरु जी भी, यज्ञ के लिए आवश्यक हो गया करना, तब भी दूसरा उपाय बोले मूर्ति बनाकर चल सकता है, बोले वो करो, लेकिन दूसरा शादी करो नहीं करो, ये राम का संकल्प था। तो बोले मैं इस जन्म में तुम्हारी मूर्ति बनाकर विरह में रहूंगा, प्रचार करूंगा, तो तुमको भी वही रस और मेरा बदला जगाने के लिए तुम विष्णु प्रिया के रूप में, आज भी धामेश्वर में जो विष्णु प्रिया जी के द्वारा सेवित जो विग्रह है कोलद्वीप में है ना, धामेश्वर नवदीप जहां टाउन का नवदीप धाम जो कहा जाता है, तो ये तो लीला करनी पड़ेगी। लखनलाल तो इसमें भाटी नहीं ले, चुपचाप बैठे, इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है मधुरम द्वीप में, भगवान की ये मधुर लीला है वहां पर, नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को कह रहे हैं। लेकिन इसकी हमें शिक्षा मिलती है, राम एक पत्नी व्रत से जुड़ा हुआ, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर अंतिम भाव कहते, तीसरी शिक्षा क्या है राम जी की, चाहे राम जी सीता से दूर रहे, सीता जी राम से दूर रहे, भक्त भगवान से दूर रहे, इसमें क्या है, विरह होता है, उसमें रस आनंद प्रेम और बढ़ता है, लेकिन अगर आपको बाह्य रूप में कष्ट लगता है, दूर रहना दुख लगता है राम की लीला में, भक्तों के विरह में, तो भी इसका अतरंग कारण है। चैतन्य भागवत में लिखा है, यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख तब तो जानी होता रह परमान, तब समझिए कि किसी वैष्णव को दुख मिल रहा है शरीर से बाहर से, लेकिन अंदर से वो भक्त परमानंद में रमता है, वो असली आनंद है। राम और सीता का विरह नहीं है, वो माया सीता का ले गया था, रावण छू भी नहीं सकता सीता को, चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको क्लियर किया है। और अगर राम के ऊपर जो लोग आतंक कलंक लगाते हैं या तर्क करते हैं कि राम जी सीता के पति श्रेण थे, पागल थे, कामी थे, तो फिर क्यों छोड़ दिया? वो धोबी जब कहा तो सीता जी का त्याग क्यों कर दिया? कामी होता है त्याग कर दे, धोबी को मार देगा कैसे, क्यों त्याग दिया आपने? अगर काम क्यों छोड़ता था धर्म, मतलब बुझा, वहां पर राज धर्म निभा रहे, यहां पर पत्नी धर्म निभा रहे। भगवान ने समय समय पर राजा का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, पिता का सब निभाया, और ये जो रामचरित सुनेगा वो भी जीवन में पूर्ण बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। ओके, हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे
हरे। तो मुझे सीमा रेखा समय की दी गई थी कि आप 2:25 से 2:30 के बीच में करेंगे, तो शायद मैं उसी भी अंदर जाता हूँ। हरे कृष्ण धन्यवाद।
अनाउंसमेंट बोलिए ना, तो
निवेदन है 2 मिनट धैर्य रखिए, प्रसाद सबके लिए है, धूम माता। हरे कृष्ण।